ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप सब मालूम है कि ये महेश्वरी भवन है और महेश्वरी है एक जाति जिनका व्यापार है व्यापार, उनकी वृत्ति है व्यापार और पूरा सूरत नागरी का केंद्र बिंदु या मूलाधार है व्यापार। तो मैं व्यापारी नहीं हूं, आशा है आप सभी मुझको विश्वास करते हैं, क्योंकि आजकल ऐसा लगता है कि बहुत धर्म प्रचारक का अर्थ है अर्थ, इनके उद्देश्य है पैसा कमाना, तो वो हमारा उद्देश्य नहीं है। परंतु जिससे आप जो हमारे बीच बहुत है व्यापारी, नहीं सब व्यापारी तो अभी तक मार्केट में है ना, तो इस समय नहीं हमारे बीच कोई है व्यापारी, अरविंद साबू। तो आप सब इसी वातावरण में रहते हैं, इस संस्कृति से आप बहुत परिचित है। तो मेरा माल क्या है, क्या चीज मैं बिकना चाहता हूं। अगर एक व्यापारी दूसरे लोग को, कस्टमर होने वाले लोग को किसी चीज दिखाते है तो बोलते वो चीज का क्या गुण है, क्या फायदा मिलेगा उसका खरीदने से, तो इस प्रकार प्रयास करते हैं वो कस्टमर को कन्विंस करना कि वो पैसा जो अभी आपका जेब में तो मुझको देना पड़ेगा और विनिमय में आप इसी चीज मिलेगा। तो हमारा माल है जो हम बिकना चाहते हैं, एक्चुअली हम पैसा नहीं लेते, आप अगर दक्षिणा में देंगे हम ले लेंगे और श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त करेंगे। तो हमारा माल है कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति, और हम यही हमारा प्रस्ताव है कि आप सब शुद्ध कृष्ण भक्ति करेंगे। तो पहला प्रश्न हुआ वो शुद्ध कृष्ण भक्ति क्या है, कृष्ण भक्ति तो शुद्ध ही है नहीं, अशुद्ध क्या है, तो लड़ाई अशुद्ध है, गंदी बात बोलना अशुद्ध है, अन्याय से व्यापार करना अशुद्ध है, सूरत में होते हैं, होते हैं। ऐसा व्यापारियों में ये बात चलती है कि न्याय से व्यापार करना तो संभव नहीं है, तो ये सब अशुद्ध है, लेकिन भक्ति तो शुद्ध ही है नहीं। भक्ति का स्वभाव है शुद्ध, परंतु शुद्ध चीज में अगर हम कुछ अशुद्ध डालेंगे तो उस चीज का गुण बदल जाता है, तो फिर भी वो शुद्ध चीज तो शुद्ध होते हैं, जैसे गंगा जल तो सदैव शुद्ध होते। बड़ी दुख की बात है कि कुछ लोग गंगा के पास मल त्याग करते हैं और वो ताती तो गंगा के बीच जाते हैं, या आजकल आधुनिक व्यवस्था है कि वो सब सहज जो गंगा के ऊपर सब लोग जो मल त्याग करते वो मल तो गंगा भेज देते। तो अगर छाती गंगा में हो तो फिर भी गंगा तो शुद्ध है, परंतु हम जब गंगा स्नान करना चाहते हैं तो हम उसी जगह जिसमें छाती है उस जगह हम स्नान नहीं करते। तो इस प्रकार भक्ति का स्वभाव है शुद्ध अति शुद्ध, परंतु वो भावना भक्ति एक भावना है। इस भावना में यदि मिश्रित उद्देश्यों है वो भक्ति मिश्रित बोलते। तो इस प्रकार कर्म मिश्र भक्ति है, ज्ञान मिश्र भक्ति है, योग मिश्र भक्ति है। तो कर्म मिश्र भक्ति है उस प्रकार की भक्ति जिसमें हम कृष्ण भक्ति करते हैं परंतु साथ साथ बहुत इच्छाएं है कि इस भौतिक संसार में मैं सुखी होऊंगा, इंद्रिय तर्पण की इच्छा। और ज्ञान मिश्र भक्ति है उस प्रकार की भक्ति जिसमें पूरा विश्वास नहीं है कि श्री कृष्ण परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान, वो अभिप्राय है कि भक्ति करने से हम परम सत्य ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे। और योग मिश्र भक्ति वो ज्ञान मिश्र भक्ति जैसे है। तो शुद्ध शुद्धा भक्ति की परिभाषा शिल रूप गोस्वामी की भक्ति रसामृत सिंधु नामक पुस्तक में है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामाद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तमा भक्ति यही भक्ति है जिसमें कुछ भी अभिप्राय नहीं है कर्म से ज्ञान से कुछ प्राप्त करना। वो उद्देश्य है कृष्णार्थे खिल चेष्टा। भक्तों सब कुछ जो वे करते हैं बोलते हैं चिंतन करते हैं वो सब कुछ अनुकूल यही न कृष्णानुशीलनम, सब कुछ भक्ति में लग जाते हैं जिससे भगवान से हम कुछ मिलेंगे। उसी प्रकार की कुछ इच्छा नहीं है, किस लिए भक्ति करना है? केवल भक्ति के लिए। हम शुद्ध भक्ति में हम कृष्ण से प्रेम के बिना और कुछ भी नहीं चाहते, ये शुद्ध भक्ति है। हे भगवान मुझको ज्यादा पैसा दो, हे भगवान मुझको मुक्ति दे दो, यही सभी प्रार्थना अशुद्ध है। तो जिसी प्रकार भी लोग भक्ति करते हैं उससे उनका कल्याण होगा, परंतु परम कल्याण होगा निस्पृह भक्ति से, अर्थात उसी भक्ति जिसमें एक ही उद्देश्य होते हैं सब कुछ जो हम करते हैं हम केवल श्री कृष्ण की प्रीति से ही करते हैं। तो वो हमारा प्रचार, वो हमारा माल है। और ये भक्ति कैसे खरीदना है, कितना पैसा देना है ये शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए? तो पैसा से भक्ति नहीं मिलती है। कृष्ण भक्ति रस भावनमति क्रियतां यदपि tatralolyam mulyam ekalam jammakoti sukritayana labhyate. Kriyatam yadi katopi labhyate. So, is Krishna bhakti ras upalabdhe? Uska dam kya hai? Koti koti jamon ki sukriti se, bhautik punya karma se Krishna bhakti prapt nahi hote hai. Tatra lolyam api mulyam ekalam. Lolyam artat tivra asha Krishna bhakti prapt karne ke liye wo eki mulya hai is Krishna shuddha Krishna prem bhakti prapt karne ke liye. To hum kya milenge yadi hum shuddha Krishna bhakti karenge? Hum kya milenge usse? Hum kya bada amir ban jayenge ya hum Pradhan Mantri ban jayenge? Nahi. To Krishna bhakti ka phal hai bhakti. Bhaktya sanjataya bhaktya. To hum kya milte hai usse? To Rupa Goswami shuddha bhakti ki paribhasha us bhakti rasamrit sindhu ka prarambh mein लिख दी. और क्या क्या कल्याण मिलते हैं भक्ति करने से? तो वो छह प्रकार के मुख्य कल्याण है रूप गोस्वामी की भाषा में. क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष लघुत कृत सुदुर्लभ संद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणे च सा. तो पहला गुण है इस शुद्धा भक्ति का, पहला गुण है कि क्लेश आदमी भक्तों शुद्धा भक्ति करने से तो सभी प्रकार के क्लेश से मुक्त होते हैं. तो उसका प्रमाण क्या है? हम देखते हैं कि लोग जो इस शुद्धा भक्ति साधना करते हैं तो वे भी बीमार होते हैं, उनके जीवन में बहुत प्रकार के क्लेश होते हैं. क्लेश तीन प्रकार ही है, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश. आध्यात्मिक क्लेश है जो मन से और शरीर से उद्भूत होते हैं. शारीरिक क्लेश उस प्रकार है रोगग्रस्त होना, ऐसे कभी कभी ऐसा होता है अचानक कुछ दर्द होते है पीठ में या दांतों में. और मानसिक क्लेश विशेषकर इस आधुनिक युग में मानसिक क्लेश बहुत होते है, ये सब बड़े बड़े शहरों में खास तनाव बहुत होते हैं और डिप्रेशन होते हैं, बिना कारण से लोग बहुत गुस्सा होते हैं. तो ये सब मानसिक क्लेश है. और आदि भौतिक क्लेश है उस प्रकार का कष्ट जो दूसरे व्यक्तियों हमको देते हैं. तो अधिभौतिक मतलब सभी प्रकार के जीव, केवल मनुष्यों नहीं हमको कष्ट देते हैं. तो छोटे मच्छा भी हमको कष्ट देते हैं. तो अलग अलग लोग से और अलग अलग प्राणियों से हम कष्ट मिलते हैं, उसको अधिभौतिक क्लेश बोलते हैं. और अधिदैविक क्लेश है प्राकृतिक क्लेश, जैसे भूकंप होते, अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है, दुर्भिक्षा होती है, सूरत में दुर्भिक्षा नहीं होती है, लेकिन हो सकते, कोई गारंटी नहीं है कि समृद्ध सूरत में भी एक दिन आएगा जिसमें दुर्भिक्षा हो। तो ये सब आदि दैविक क्लेश बोलते हैं, प्राकृतिक क्लेश। तो हम देखते हैं कि भक्तों भी जो शुद्ध भक्ति साधना करते हैं तो वे भी ये सब क्लेशों से पीड़ित होते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो उसका करने से हम कभी भी रोगग्रस्त नहीं होंगे। तो हरे कृष्ण बोलने से शरीर एकदम चुष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो क्लेशाग्नि, क्लेशों, सभी प्रकार के क्लेशों से मुक्त होना, ये शुद्ध भक्ति करने का प्रथम फल, इसका अर्थ क्या है? तो श्रील रूप गोस्वामी इस प्रकार विश्लेषण किए हैं कि सभी प्रकार का क्लेश का मूल कारण है पाप, और पाप का मूल कारण है अज्ञान। तो भक्तों तो ज्ञानी होने चाहिए। ज्ञानी का मतलब वो व्यक्ति जो जानते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कृष्ण ही परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान है, इनके ऊपर कोई नहीं है, इनके समान भी कोई नहीं है। वे अनादि है, वे और सभी वस्तुओं और जीवों के आदि है, वे गोविंद ही है, सर्व कारण के कारण है। और जीव, सब जीव कृष्ण का दास है, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो सब पाप करने का मूल है इस सरल बात स्वीकार नहीं करना कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा भगवान कृष्ण का दास हूं। इस सरल बात स्वीकार नहीं करने से हम इस भौतिक संसार में अनादिकाल से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार हम जन्म लेते, बार बार हम मृत्यु प्राप्त होते, और इस प्रकार हम अनेक प्रकार के कष्ट क्लेश मिलते हैं। तो शुद्ध कृष्ण भक्ति अभ्यास करने से हम भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए खुद को तैयार करते हैं। कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति वो साधना है जिससे पुनर्जन्म नहीं होते। तो सभी प्रकार के क्लेश से पूरा मुक्त होने का एक ही उपाय है शुद्ध कृष्ण भक्ति। और जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं वे उनके जीवन में स्वयं अनुभूति करते हैं कि वो सब क्लेश का प्रभाव मेरे जीवन में कम जाता है। तो भक्तों तो बीमार होते हैं और शायद गरीब होते हैं, महेश्वरी भवन में ऐसी बात बोलना उचित कि नहीं, क्योंकि जो महेश्वरी है तो गरीब होने उनके लिए सबसे निकृष्ट अवस्था है। महेश्वरी का मतलब महेश्वर धन अध्यक्ष। तो गरीब होते हुए भी भक्तों ये सब क्लेशों से प्रभावित नहीं होते। क्योंकि जानते हैं कि जिस अवस्था में भी हूं वो मेरा पूर्व कृत कर्म का फल है, परंतु हरि गुरु और वैष्णवों की कृपा से मैं गरीब होते हुए भी, बीमार होते हुए भी, समाज से उपेक्षित होते हुए भी मैं हरे कृष्ण जाप और कीर्तन कर सकता हूं। तो कोई भौतिक विघ्न नहीं है कृष्ण भक्ति में। तो भक्तों अनेक अनेक क्लेशों के बीच में होते हुए भी सदैव प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि श्री कृष्ण शरणम मम। तो इस प्रकार शुद्ध कृष्ण भक्ति करने से भक्तों इस जीवन में भी क्लेशों का महसूस मुक्त होते हैं, और चूंकि इस देह त्याग करने के पश्चात वे सीधे भगवान की धाम जाते हैं, इसलिए वे पूर्ण रूप से सभी क्लेशों से मुक्त हो जाते हैं। तो क्लेशाग्नि है प्रथम गुण कृष्ण भक्ति का, शुभ। तो एक नेगेटिव बात है जो जो हम चाहते नहीं चाहते, क्लेशों वो सब बंद हो जाते हैं कृष्ण भक्ति से। फिर पॉजिटिव है शुभदा, कृष्ण भक्ति करने से हम पूरा शुभ मिलते। तो सामान्यतः विषयी जन का विचार में कि शुभ का मतलब ज्यादा पैसा, स्वस्थ अच्छी होना, घर में देश में ज्यादा क्लेश नहीं है, जागरण नहीं है, शांति। परंतु इस भौतिक संसार में सब कुछ अशुभ है, क्योंकि चाहे भी हम धनी या दरिद्र, चाहे भी हम बड़ा या छोटा, सबका जन्म मृत्यु जराव आदि दुखों भोगना पड़ेगा। तो वास्तव शुभ है कृष्ण भक्ति, केवल शुद्ध कृष्ण भक्ति जिसमें काम की इच्छा नहीं है, ज्ञान की इच्छा नहीं है, केवल शुद्ध भक्ति से जीव प्रसन्न हो सकते। प्रेमानंद है वास्तव आनंद, धनानंद, जनानंद, सुंदरियानंद, ये सब नकली आनंद है। वास्तव सुख है श्री कृष्ण भक्ति में। और शुभ है कि भक्तों श्री कृष्ण का अनुग्रह सदैव अनुभूति करते हैं, और इस प्रकार वे भक्तों अनुभव करते हैं कि क्लेश में क्लेशों के बीच में होते हुए भी मेरे जीवन में सब कुछ शुभ है, कुछ भी अंतराय नहीं है, कुछ भी विपत्ति नहीं है, सब कुछ अनुकूल है भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। सुख में दुख में, भौतिक सुख भौतिक दुख में भक्तों अनुभव करते हैं कि ये ही कृष्ण की कृपा है। श्रेष्ठ उदाहरण है सुदामा, जो बहुत गरीब अवस्था में थे, परंतु उससे उनका मन विचलित नहीं था। उन्होंने सोचा कि ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, और उनकी पत्नियों की आकृति से द्वारका धाम गए थे, कुछ धन, परम धनी भगवान श्री कृष्ण से मांगने के लिए। लेकिन प्रेमाप्लुत होने से धन की भिक्षा करना तो नहीं किया, उनका मन में याद नहीं आया था जिस किसलिए मैं आया हूँ यहाँ द्वारका। तो वापस जाकर घर देखा कि वो छोटी कुटी जो थी वो अभी तो महान राजमहल बन गए हैं। तो उनकी पहली अवस्था बहुत दरिद्र थी, और श्री कृष्ण की कृपा से तो बहुत बड़ा धनी बन गए है। परंतु दोनों अवस्था में उनका विचार था कि ये सब कृष्ण की कृपा है। पहले सोचते थे कि दरिद्रता में कृष्ण की कृपा मिलता हूँ, कि क्योंकि ये कृष्ण की इच्छा है। यदि मेरे पास बहुत धन था तो शायद मैं बहुत दम्भिक बन जाता, तो अच्छा है जिससे मैं नम्र रहूँगा, भगवान कृष्ण मुझको ज़्यादा पैसा नहीं देते। तो धन प्राप्त होने के बाद तो उनका विचार था कि ये सब कृष्ण की कृपा है, भगवान कृष्ण इनकी अपनी इच्छा से मुझको इतना धन दिया है, वास्तव में ये सब संपत्ति इनकी है, इसलिए सब कुछ इनकी सेवा में सब कुछ नियुक्त करना पड़ेगा। तो भक्तों सभी अवस्था शुभ देखते हैं, और वास्तव में कृष्ण भक्ति में सब कुछ शुभ ही है। तो कृष्ण भक्ति शुभ दायिनी है। कैशाग्नि शुभदा मोक्ष लघुचकृत, जो ज्ञानी है योगी है वे पूरा भौतिक अवस्था देखने से सद्विचार करते हैं कि पूरा जगत दुखमय है। और वैसे ही श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि इस भौतिक संसार दुखमय है, और इसलिए ज्ञानियों का प्रयास है इस भौतिक संसार से मुक्त होना, और मुक्ति प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करते हैं, जन समागम से बहुत दूर जाते, जंगल में, पहाड़ों में, गुफाओं में, और इस प्रकार बहुत तपस्या अभ्यास करने से वे प्रयास करते हैं कि हम सब भौतिक इच्छाएं और आसक्तियों से मुक्त होंगे, और वो मुक्ति होगा वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाए। तो भक्तों की इच्छा नहीं है, भगवान की अंग कांति जो ब्रह्म ज्योति बोलते हैं उसमें लीन हो जाए। भक्तों की इच्छा है परम पुरुष गोविंद की शुद्धा सेवा करना। तो श्री कृष्ण गोविंद की सेवा केवल मुक्त अवस्था में करने हैं, वैकुंठ जगत में, गोलोक धाम में श्री कृष्ण की सेवा जो होती है तो केवल मुक्त पुरुषम करते हैं। मुक्त पुरुष का मतलब नहीं है केवल जिनके लंबी दाढ़ी है और हमेशा ओम 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 बोलते हैं। मुक्त पुरुषों में श्रेष्ठ है नंद बाबा, यशोदा रानी, राधा रानी, राजवासियों जिनके स्वभाव बहुत सरल है वे श्रेष्ठ मुक्त पुरुषों है, क्योंकि उनका मन में श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की सेवा के अलावा और कुछ भी चिंतन आना संभव नहीं है। तो यही परम मुक्ति है। और ऐसे शुद्ध भक्तों का मन में मुक्ति का चिंतन भी कभी भी नहीं आता। उनका मन में केवल सेवा भावना है। तो उस प्रकार की मुक्ति जिसमें ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना भक्तों तो नहीं चाहते, क्योंकि उस वास्तव में भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होते हैं, परंतु कृष्ण सेवा करने का अवसर भी नहीं होते। इसलिए भक्तों उस प्रकार की मुक्ति की इच्छा नहीं करते हैं और इसलिए वे परम मुक्त है, क्योंकि उनकी एकमात्र इच्छा है श्री कृष्ण की सेवा करना। इसलिए वे वो ही इच्छा करने से तो अपने आप वे विमुक्त है। तो ये सब बात मुक्ति मोक्ष तपस्या, तो भक्तों की कुछ भी रुचि नहीं है वो सभी बातें। उनकी इच्छा है सेवा करना। इसलिए शुद्धा भक्ति का एक गुण है या लक्षण है मोक्ष लघुतकृत। वो मोक्ष जो ज्ञानियों बहुत बहुत बड़ी बात मानते हैं, वो शुद्ध भक्तों उसको छोटी मानते हैं। वो शुद्ध भक्ति का एक गुण है सुदुर्लभा। शुद्ध कृष्ण भक्ति बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभ है क्योंकि सब बद्ध जीव इस भौतिक संसार में आया है कृष्ण भक्ति करने के लिए, नहीं है इंद्रिय सुख के लिए। मनुष्यानं सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानं कश्चित् मां वेति तत्त्वतः। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत बहुत मनुष्यों में शायद एक उत्साही होंगे सिद्धि आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए, और सिद्ध जनों में जो बहुत दुर्लभ है, बहुत बहुत सिद्ध जनों में बहुत दुर्लभ है एक व्यक्ति जो तत्वतः अच्छी तरह कृष्ण को जानते हैं। तो कृष्ण भक्ति सुदुर्लभ भी है, अति बहुत ही दुर्लभ। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो अति दुर्लभ भक्ति इनकी कृपा से सबके लिए आसानी से उपलब्ध है। सामान्यतः वो शुद्धा भक्ति बहुत ही दुर्लभ है। मत्स्य कर्म वराह नरसिंह इत्यादि विष्णु अवतारों इनकी कृपा से इस भौतिक संसार में अवतरित होते हैं हम जैसे बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए, परंतु शुद्धा कृष्ण भक्ति व्रज भक्ति जो चैतन्य महाप्रभु प्रचार करते हैं वो व्रज भक्ति बहुत ही दुर्लभ है। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो सुदुर्लभ भक्ति सबके लिए उपलब्ध होते। कठोर तपस्या करने का जरूरत नहीं है, तुरंत संसार त्याग करने का जरूरत नहीं है, केवल यही जरूरत है यही बात स्वीकार करना कि श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, मैं उनका दास हूं, मेरा जीवन का एकमात्र लक्ष्य है इनके चरणों में शरणागत होना, और यही संकल्प के अनुसार हमारा पूरा जीवन शैली बनाना। सुदुर्लभ संद्रानंद विशेषात्मा, वो आनंद जो सुधा कृष्ण भक्ति में मिलते हैं वो आनंद इंद्रिय सुख से कल्पनीय नहीं। वो इंद्रिय सुख अन्वेषण करने की अवस्था में कल्पनीय नहीं है। तो इस भौतिक संसार में प्राय सभी लोग इंद्रिय सुख का आनंद प्राप्त करने का प्रयास में व्यस्त रहते, लेकिन वो सुख जो वे मिलते हैं वो तुच्छ है। यन मैथुन आदि गृह में ही सुखम ही तुच्छ। और कुछ लोग हैं जो इस संसारिक सुख की वो तुच्छ है वो विचार करते हैं और उसलिए वे प्रयास करते हैं ब्रह्म सुख के लिए, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाने का प्रयास करते हैं। तो इंद्रिय सुख तो कुछ सुख है लेकिन बहुत ही कम है, और हर एक बूंद इंद्रिय सुख के साथ एक विशाल सागर भी दुख। तो वो ब्रह्म सुख, वो ब्रह्म ज्योति में लीन जाना वो सुख जो है वो इंद्रिय सुख से और बहुत अधिक है, परंतु वो कुछ नहीं है शुद्ध कृष्ण भक्ति आनंद की तुलना में। शुद्ध कृष्ण भक्ति में वो आनंद जो भगवान कृष्ण इनकी कृपा से इनके शुद्ध भक्तों को प्रदान करते हैं वो विशाल ही है। तो शायद शुद्ध कृष्ण भक्ति करने से आप ज्यादा पैसा नहीं मिलेंगे, परंतु आप ज्यादा आनंद मिलेंगे। वो कृष्ण भक्ति आनंद उसका गुण साधारण सामान्य भौतिक सुख से पूर्ण पृथक है। शुद्ध कृष्ण भक्ति में वो आनंद जो है वो पूर्ण शुद्ध है। धनी लोग का सुख है कि मेरे पास इतना सा धन है, दूसरों के पास इतना सा नहीं है, परंतु शुद्ध भक्तों का सुख है कृष्ण भक्ति में बहुत आनंदित होते कि भगवान कृष्ण में अयोग्य होते हुए भी भगवान कृष्ण इनकी असीम हित की कृपा से मुझको ग्रहण किया है और भक्त tom to kanjus nahi hote. Ve prayas karte dusaron ko wo Krishna bhakti prem sukh vitaran karne. Aur wo vitaran karne mein ve aur vipulanand milte hain. So Sandrananda Visheshatma or Krishna Bhakti, Shuddha Krishna Bhakti. Ka ek aur gun hai, Shri Krishna Kashani Chasa. Krishna is naam ka arth hai, jo sarva akarshak. Inke gunon se, inki lila se, inki charitra se, unka roop se, unka sundata se, to sabhi prakar ka vichar se, Shri Krishna sabko akarshan dete hain. Parantu Shri Krishna ki shuddha bhakti itna sundar hai ki sarva akarshak Shri Krishna ek samanya jivon ki bhakti se akarshit hote hain. To bahut se log puchte hain ki bhagwan ko dekha kya. Parantu Rup Goswami bolte hain ki yadi hum shuddha Krishna bhakti karenge to hame bhagwan ka khoj karne ka zarurat nahi hoga. Bhagwan humko khoj karenge. Bhagwan itne santusht hoenge hamari bhakti se. To ye sab aap milenge shuddha Krishna bhakti karne se. Aur Chaitanya Mahaprabhu ka special offer bhi hai. Ye mal Chaitanya, Shuddha Krishna Bhakti Chaitanya Mahaprabhu ka mal hai. To kaise milte hain? Lulyam dura iccha se. Bhakton bhakti milti hain. To Chaitanya Mahaprabhu ka special offer hai. To is Kali Yuga mein sab log papi hai, nich buddhi hai, koi ujgun nahi hai kisi ke paas. So Chaitanya Mahaprabhu ka special offer hai, is Hare Krishna Mahamantra japo kirtan karo, shuddh bhakton ki sangati se aur margdarshan ke anusar. Aur wo sudurlabha Krishna bhakti Chaitanya Mahaprabhu dete hain bahut kam mulya se. To ye Chaitanya Mahaprabhu ka offer hai, special offer. To jyada din nahi chalega. To Chaitanya Mahaprabhu ka prachar is Kali Yuga mein Kali 10,000 varshan tak chalega. To wo bahut lamba samay hai, lamba samay nahi hai. Kyunki hum is kshanik manav janma prapt kiya hai. Aur kuch din ke baad uska ant hoga. Aur koi guarantee nahi hai ki hum manushya janma prapt karenge. Fir Chaitanya Mahaprabhu ka prem prachar ka samay mein. To abhi hamara avsar hai. Ye Chaitanya Mahaprabhu ka special offer hai. Uttam se uttam mal Shri Krishna ki shuddha bhakti. Chaitanya Mahaprabhu to bahut kam mulya mein dete hai. Hum lenge ki nahi? Hame khud nirnay karna padega. Yadi hum lenge, hamara param kalyan hoga. Agar hum nahi lenge, to kya nuksan hoga? Nuksan hoga ki punarapi jananam, punarapi maranam, punarapi janani jatareshayanam. Oh, prem bhakti, Chaitanya Mahaprabhu abhidete. Yadi ham nahi lenge, to ham fir sangsa chakka me pravesh karna padega.
Hare Krishna.
So, yehi offer hai. Aap nirnay kijiye. Aap lenge ki nahi. Hare Krishna.